शान ने जैसे ही उसके तरफ कदम बढ़ाए, आरवी को वो दिन याद आ गया जब रूम में शान ने डांस करके उसकी सांसें अटका दी थीं। आरवी ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं भी जाकर चेंज कर लूं वरना ठंड लग जाएगी। इतना कहकर उसने तुरंत जाने के लिए कदम बढ़ाया, पर जितनी तेजी से वो आगे बढ़ी उससे दुगनी तेजी से शान ने उसके तरफ बढ़ते हुए उसकी कलाई को थामकर उसको झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आरवी को उसके ऐसा कुछ करने का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। वो तो जल्दी से जल्दी वहां से भागना चाहती थी, पर जितनी तेजी से वो आगे बढ़ रही थी शान के अचानक खींचने पर उससे कई गुना ज्यादा तेजी से घूमती हुई आकर उसके सीने से टकरा गई। गीले बाल उसके चेहरे से चिपक गए और उसका चेहरा शान के सीने की तरफ झुका हुआ था। जिस कलाई को शान ने पकड़ा था वो अब उसने आरवी ने पीठ से लगाई हुई थी, जिससे दोनों के जिस्म के बीच इंच भर की ही दूरी रह गई थी। आरवी की हथेलियां शान के सीने पर टिकी हुई थीं। डर के मारे उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आरवी ने अपना सर उठाकर उसको देखा तो उसकी जुल्फों के बादलों के पीछे से झलकती उसकी सुनहरी आंखें सूरज सी चमक रही थीं। शान उसकी आंखों में एक बार फिर खोने लगा था। उसने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर फैले बादलों के बादलों को हटाना शुरू किया तो उसकी उंगलियों के पोरों के सर्द एहसासों को महसूस करते हुए उसके जिस्म की ज्वाला सी धधकने लगी। उसकी बाहों की कैद से छूटने को वो मचली थी। घबराकर उसने अपनी पलकों को झुका लिया और थमती सांसों को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। शान ने उसके चांद से सोने मुखड़े को उन बादलों के साई से आज़ाद करवाया, फिर कुछ पल खामोशी से उसके घबराए से चेहरे को देखने के बाद उसने उसके कान के पास लबों को सटाते हुए बेहद धीमी कशिश भरी आवाज़ में कहा, एक डांस मेरे साथ भी हो जाए। आरवी के कानों में जैसे ही उसकी आवाज़ पड़ी उसने चौंक कर अपनी आँखों को खोला और आँखों के सामने शान का चेहरा आ गया। आरवी कुछ कह तक ना सकी। उसका दिल बेचैनी से धड़के जा रहा था और दिमाग एकदम सुन पड़ चुका था। वो असमंजस भरी निगाहों से एकटक उसको देखे जा रही थी। कुछ पल शान भी उसकी निगाहों में देखता रहा, फिर उसकी आंखों की गहराइयों में डूबते हुए उसने उसकी बांह को आज़ाद कर दिया, पर आरवी अब भी वहीं यूं ही खड़ी रही। शान ने अपनी एक हथेली उसकी कमर पर टिकाई तो उसकी छुअन से आरवी कांप उठी। भीगा सूट उसके बदन से चिपका हुआ था और शान की हथेली उसको अपनी खुली कमर पर पड़ते महसूस हो रही थी। यही वजह थी कि उसके जिस्म में सिरहंसी दौड़ गई थी। वो घबराई निगाहों से उसे देखने लगी। शान ने अब भी उसकी निगाहों में झांकते हुए उसकी बांह पर अपनी हथेली रखी और धीरे धीरे उसकी बांह पर अपनी हथेली नीचे की तरफ फिसलाते हुए उसकी उंगली को अपनी उंगलियों से उलझाते हुए हथेली को थाम। आरवी की सांसें तेज चलने लगीं। उसकी छुअन से उसकी बाहें मचल उठीं। उसकी पकड़ से आज़ाद होना चाहा, पर शान की पकड़ उसकी कमर पर कस गई और उसकी उसको अपने और नज़दीक कर लिया। आरवी का दिल जोरों से धड़क रहा था और सांसें सामान्य से तेज चलने लगीं। दिल में अजीब से एहसासों का बवंडर उमड़ने लगा था और मन बेचैन हो उठा था। उसकी बड़ी बड़ी घबराई निगाहें शान पर टिकी हुई थीं। शान को आरवी का अक्षत के साथ डांस करना याद आ रहा था और उसकी जेलसी अब उस पर हावी होने लगी थी। आरवी को थामे हुए उसने उसके साथ रोमांटिक क्लोज डांस करना शुरू कर दिया, जिसमें आरवी किसी डॉल की तरह उसका साथ दे रही थी। उस सर्द मौसम में भी दोनों का बदन आग सा तप रहा था, जिसकी तपन उनके जिस्म को भिगोते बारिश की बूंदों को भी गर्म करती जा रही थी। ठंडी बूंदों के साथ साथ आरवी के माथे पर पसीने की बूंदें भी चुहचुहाने लगी थीं। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि शान को अचानक से हो क्या गया है। वो उसके साथ इतना क्लोज डांस कैसे कर रहा है? वो बेधड़क कभी उसकी कमर को पकड़कर उसको घुमा देता तो कभी उसके करीब आकर उसके कंधे को अपने लबों से छू देता और आरवी की सांसें अटका देता। करीब 15 मिनट चले इस सिजलिंग डांस ने वहां आग लगा दी थी। आरवी का बदन ज्वाला सा धधक रहा था और वो किसी मूंग की गुड़िया की तरह उसकी बाहों में पिघलती जा रही थी। शान ने अब उसकी बांह को उसकी पीठ से लगाते हुए उसकी बांह को उसको पीछे से तरफ घुमाकर रोल करते हुए झुककर उसके कान के पास हौले से चूम लिया। आरवी का चेहरा एकदम कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। उसने चौंक कर उसे देखा, वहीं शान भी उसे ही देख रहा था। मेरे अलावा किसी को तुम्हें छूने का हक नहीं, तो ध्यान रहे अगर आइंदा मेरे अलावा किसी के साथ कपल डांस किया या किसी को अपने करीब आने दिया तो फिर मैं तुम्हें अपना बनाने में एक सेकेंड का भी वक्त नहीं लगाऊंगा। शान ने उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद संजीदगी से अपनी बात कही, फिर एक पल उसकी हैरानी से बड़ी बड़ी हुई आंखों में झांकने के बाद उसको सीधा खड़ा कर दिया। आरवी अवाक से आंखें फाड़े उसको देखती ही रह गई और शान जाने के लिए मुड़ गया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वो एकाएक ही रुक गया और पलटे बिना ही बोला, इतनी देर से बारिश में भीग रही हो, आकर चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। इतना कहकर वो तेज कदमों से अंदर चला गया। आरवी को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या, शान कहना क्या चाहता था, उसने जो किया उसका मतलब क्या था। वो शान की बातों और उसके व्यवहार में बुरी तरह उलझ चुकी थी। अब भी उसको अपनी बांह और पीठ पर शान की सागती हथेलियों का गर्म एहसास हो रहा था। उसके गर्म लब अपने कंधों और गर्दन पर महसूस करते हुए वो खुद में ही सिमट कर खड़ी हो गई। दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था और सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। वो अब भी उन लम्हों में खोई हुई थी जब शान उसके बेहद करीब था और उसका दिमाग उसकी बातों में बुरी तरह उलझ चुका था। उसकी नजदीकी का एहसास अब भी जिस्म में सिरहन पैदा कर रहा था। चेहरा कश्मीरी सेब की तरह एकदम लाल हो चुका था। कुछ पल वो उलझी हुई सी वहां खड़ी रही, फिर उसको शान की आखिरी की कही बातें याद आईं और उसके दिमाग में कुछ बातें घूमने लगीं। वो तुरंत अपने दुपट्टे को खुद पर लपेटते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। शान अंदर पहुंचा तो हॉल में ही सुभाष जी और अर्पिता जी बैठे हुए थे। अंशु अर्पिता जी की गोद में बैठी हुई थी, उसके कपड़े चेंज हो चुकी थी और अब अर्पिता जी टावल से उसके गीले बालों को पोंछ रही थी। जैसे ही सुभाष जी की नजर भीगे हुए शान पर पड़ी, उन्होंने कुछ हैरानी से कहा, शान आप इतना कैसे भीग गए? आपकी गाड़ी खराब तो नहीं हो गई थी? उनकी आवाज शान के कानों में पड़ी तो उसने निगाहें उठाकर उन्हें देखा, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही अंशु बोल पड़ी, दादू डैडी मम्मा के साथ रेन डांस कर रहे थे बेबी जैसे, इसीलिए वो भी वेट हो गए। अंशु ने बड़ी सी मासूमियत से उनके सवाल का जवाब दे दिया। उसका जवाब सुनकर शान ने हड़बड़ाकर उसको देखा। वहीं अर्पिता जी और सुभाष जी के साथ छाया भी उसे आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से देखने लगे। शान ने सबकी हैरत भरी निगाहें खुद पर टिकी देखी तो अपनी असहजता को छुपाते हुए बोला, वो बाहर अंशु के साथ मस्ती करते हुए भीग गया था। पर भैया बेबी तो इतनी देर पहले अंदर आ गई, मैंने ही तो उसके कपड़े बदले हैं। छाया की बात सुनकर शान ने उसको घूर कर देखा, फिर सख्त भाव के साथ बोला, हाँ मैंने ही उसको अंदर भेजा था, एक कॉल आ गई थी मुझे तो उसी में वक्त लग गया। शान ने इतनी सफाई से झूठ बोला, फिर भी उसका झूठ उन्होंने पकड़ ही लिया और हौले से मुस्कुरा उठे। शान ने सबकी रहस्यमय मुस्कान देखी तो झेपते हुए तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सबकी उसके शर्म से लाल गाल देखकर हंस पड़े। उनकी हंसी की आवाज शान के कानों में पड़ी तो उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। इसके साथ ही लबों पर हल्की मुस्कान फैल गई। वो और तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गया।